Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. And of course, you can call us on 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464 and do prefix the code 011. I'm Sarabjeet Kaur and along with me is my co-anchor Subodh Mishra.
Dhanyawad Sarabjeet aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke sath Market Mantra hazir hai. Aaj ravivar hai aur har ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sawalon ke jawab denge. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद।
पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
India and Argentina agree to boost cooperation in various fields, including trade and defense. PM Narendra Modi reaches Brazil to participate in the 17th BRICS summit beginning tonight. And domestic markets to focus on India-US trade talks and quarterly earnings results for Q's next week.
भारत और अर्जेंटीना के बीच व्यापार और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंचे और अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ता और कंपनियों की तिमाही आमदनी पर। आइए पहली खबर पे नज़र डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आज शुरू हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन सुधारों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंक व्यवस्था में सुधार करना और संतुलित तथा समावेशी वैश्विक शासन को बढ़ावा देना है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। दो दिन के सम्मेलन के बाद श्री मोदी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया जाएंगे। दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ कार्यनीतिक संबंधों के बारे में प्रधानमंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ चर्चा करेंगे।
एंड सुबोध, वी नाउ हैव बीन एबल टू कनेक्ट ऑनलाइन विद सुधेंद्र, AIR correspondent, who is presently positioned in Rio de Janeiro. Sudhendra, what's the latest update as far as the 17th BRICS summit is concerned, and what does India have to bring on the table? I'm afraid we'll have to get Sudhendra back on the line. Moving on further in the story, earlier Prime Minister Narendra Modi concluded a productive meeting with Argentina President Javier Milei yesterday. They agreed to enhance cooperation in key sectors including trade and commerce, technology, defense, space, health and pharmaceuticals, and further deepen the strategic partnership between the two countries. Considering the potential opportunities for both the nations, Prime Minister requested Argentina's support in expanding the India-Mercosur Preferential Trade Agreement. Highlighting its strength in affordable and quality medicines, India called for easing of entry regulations for Indian pharma companies. Argentina confirmed that it will allow imports for medicines having US FDA or European EMA approvals. Cooperation in energy and critical minerals was a key focus. With vast reserves of shale gas, oil and lithium, Argentina is seen as a reliable partner in powering India's growing clean energy and industrial needs. And we have these details from our correspondent now.
Prime Minister requested Argentina's support in expanding the India-Mercosur Preferential Trade Agreement. Highlighting its strength in affordable and quality medicines, India called for easing of entry regulations for Indian pharma companies. Argentina confirmed that it will allow imports for medicines having US FDA or European EMA approvals. Cooperation in energy and critical minerals was a key focus. With vast reserves of shale gas, oil and lithium, Argentina is seen as a reliable partner in power India's growing clean energy and industrial needs.
Listeners, we are now being able to connect with Sudhendra, AIR correspondent, who is presently positioned in Rio de Janeiro. Sudhendra, welcome to Market Mantra. Kindly let us know, what are the brief details about the BRICS summit and what does India have to bring to the table?
Well, you know, BRICS is an important platform for global south countries, and Prime Minister Narendra Modi himself has taken the lead, and India is a prominent member. And today, a short while from now, the BRICS summit deliberations will begin after leaders start arriving at the venue. And, you know, Brazil is hosting the summit, and so they have set a theme that strengthening global south cooperation for inclusive and sustainable governance. And India has stood with Brazil on this issue. And the focus will also be on energy, finance, and global governance reforms. And today, on the first day of the summit, the permanent members of the BRICS have an agenda to take up issues related to peace and security in the region. And Prime Minister Narendra Modi will be presenting Indian perspective on the various issues.
Thank you, Sudhendra, for those details.
This will be followed by a debate on need to reform global governance, and artificial intelligence is also a theme today under discussion.
Thank you very much. Our first caller has now joined us.
जी,
NR Prasad.
बेंगलुरु से NR Prasad हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका. सवाल पूछें.
Good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. Sir, I just want to know any of the three multi-asset mutual fund names which has got realty sector, gold and equity. And I'm just keeping it for 3 long years. So I just want the names of the three mutual fund names. That's it. Thank you.
So, Mr. Prasad, I would say that, what I can tell you is I can give you the broad parameters for selecting a multi-asset allocation fund. So as you already mentioned, that a multi-asset allocation fund basically invest in three different classes, wherein it's basically equity, debt, and gold. When it comes to real estate, we do have, funds which provide, allocation to real estate, but generally it is, on the lower side. It is very minimal. So the main component or the main, portfolio is usually filled with equity, debt, and gold. Real estate is usually low. So I would say, firstly, you'll have to increase your horizon. Instead of 3 years, I would say go for at least 5 or 6 years, because generally these funds have a 50 to 60% allocation towards equity. And, maybe you can go for a fund which has been there for some time, and then you can, look for its performance in comparison to the peers and the benchmark.
जी, अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से देबू. देबू, स्वागत है आपका. सवाल पूछे.
हाँ, नमस्कार सर.
नमस्कार
सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग तो अब सीनियर सिटीजन हो गए, हमारा बेटा बैंक में एफडी है हमारी, तो बैंक में एफडी के साथ हमने उनसे ये पूछा म्यूचुअल फंड में जाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हम बास्केट होती है, तो ये हमें सरल तरीका क्या है म्यूचुअल फंड में हम बेटे को इन्वेस्ट कराना चाहेंगे, तो इसके लिए कैसे क्या तरीका है, और ये एक बैंक फंड मैनेजर होता है, इसके बारे में बताइए, फंड मैनेजर कहाँ मिल पाते हैं, कैसे मिल पाएंगे, जो आप अपने कार्यक्रम में बताते हैं, तो इसकी थोड़ी सुविधा हो तो आसान तरीके से. एफडी का तो तरीका आसान है, ब्रांच में जाइए एफडी कराइए आइए, पर म्यूचुअल फंड में आप कहते हैं इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ये हमें समझ नहीं आ रहा, कहाँ कैसे संपर्क करें.
देबू जी, देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है. जैसे कि आपने कहा, इसके कई तरीके हैं. एक तो है कि आप अपने किसी भी नज़दीकी बैंक में जा सकते हैं. आजकल तकरीबन सारे बैंक्स आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने में यू नो आपकी सहायता करते हैं. वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करते हैं. बट जब भी आप एक बैंक में जाएंगे, वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अक्सर संभावना रहती है कि वो आपको म्यूचुअल फंड के नाम पे एक यूलिप बेचना चाहते हैं, जिसमें वो कहेंगे कि आपको एक इंश्योरेंस भी मिलेगी. तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर वो कह रहे हैं कि उस प्रोडक्ट में इंश्योरेंस है, तो उसके लिए चुनाव ना करें, केवल एक म्यूचुअल फंड के लिए जाइए. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एम्फी, जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाइए. वहाँ पे आप अपना एड्रेस का पिन कोड डालिए और वहाँ से आपके जो भी आसपास के एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी. आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, फ़ोन करिए. वो आके इनिशियल जो भी पेपर वर्क है, एक KYC रिक्वायरमेंट होती है, एक आम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि जिसके लिए आमतौर पे आपका आधार से सब कुछ हो जाता है, वो आपका पेपर वर्क शुरू करा करके आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शुरू करा देंगे. तीसरा तरीका, आप डायरेक्ट ऑनलाइन जा सकते हैं. आजकल बहुत फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और आप डायरेक्ट AMC की वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं. MF सेंट्रल है, गवर्नमेंट द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो आप वहाँ पे भी डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं KYC के जरिए. बाकी जो मेरी सलाह रहेगी वो ये रहेगी कि शुरुआती तौर पे आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का चुनाव करिएगा. अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में होता है कि लगभग 70% आपका पैसा इक्विटी में लगता है, 30% आपका डेट में लगता है. एक शुरुआती निवेशक के लिए बहुत अच्छा है. लमसम पैसा ना डालिएगा, SIP करिएगा. SIP यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट, जो भी आपके बेटे को कन्वीनियंट हो, वो 500 रुपये भी हो सकता है, 1000 रुपये भी हो सकता है महीने का, उसका चुनाव करें. शुरुआत में एक अपनी डेट तय करें, उस तारीख पर उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली निकल जाएगा और उस फंड में निवेश हो जाएगा. और इसको एक लंबे समय तक करिएगा, इसमें कंसिस्टेंसी रखिएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे 3-4 महीने करा, मार्केट में नीचे गिराव आया तो हमने बंद कर दिया. उसको कंसिस्टेंट रखिएगा. और शुरुआत करने के लिए म्यूचुअल फंड बहुत सही रहेगा. जो बास्केट आप कह रहे थे, वो बेसिकली एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है उसमें, क्योंकि जैसे कि भले ही आप 500 रुपये का निवेश करेंगे, तो जो एक पोर्टफोलियो होता है, वो आपका 500 रुपये सिर्फ एक स्टॉक में नहीं, कहीं स्टॉक्स में बटके लगेगा एक पोर्टफोलियो में. उससे हमारा जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है.
और दिल्ली से योगेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. योगेश जी, अपना सवाल पूछिए.
थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल. सो बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू रेज अ लिटिल कंसर्न, बिकॉज आई एम यू नो गेटिंग टू हियर अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑन मल्टी एसेट फंड, बट देयर इज अ वन इनहेरेंट प्रॉब्लम विद इट. इफ यू सी क्लोजली, देयर इज द ऑल योर एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग इक्विटी इज नाउ बीइंग मैनेज्ड बाय ओनली सिंगल AMC. So I would like to re-quote Dhirendra here, ke don't put your eggs in one basket. We also diversify on the level of AMCs when we build a portfolio. So one thing is that the question is that there is a nowadays concern for grow users, like they are forced to have mutual funds in a demat holding manner, unlike the SOA which we used to have. So how these are both two different from each other, and what are the pros and cons of SOA versus DMAT holding in case of mutual fund NAV, a mutual fund unit? Second question.
So firstly, I would like to tell you that the investors still have the option to opt for the SOA thing. The only thing is that the default option has become the DMAT one with Grow. So you can still opt for the SOA thing. How both of these are different are is that in the case of DMAT account, all your units and all the things are basically kept by the not exactly kept, but the records are maintained by the DMAT provider. And in the case of SOA, you can directly go to the AMC or the RTA, like CAMS or K FinTech. You can deal directly with the AMC. But in case of the DMAT holding, you'll have to deal only through your broker. Secondly, in case of DMAT, if you go for the DMAT option with Grow or any other broker, the thing would be that many of them still do not provide SWP option, which is a systematic withdrawal plan, and this can be slightly you know, problematic in the case of retirees. However, there are upsides of having a DMAT as well. So you are able to, you know, look at all your holdings at, you know, one place. Secondly, it is comparatively easier to update your details, like the bank account details and the nominee and the address, because you don't have to, you know, do it, you know, separately with the each AMC or the folio. But that said, these things are now, you know, comparatively easier in the case of SOA format as well, because, you know, you have platforms like MF Central, which can, you know, help you with the same.
जी, अगले कॉलर हैं जयपुर से प्रशांत. प्रशांत, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
नमस्कार सर.
नमस्कार
सर, मेरा भी अलग अलग चार पांच म्यूचुअल फंड्स में लंबसम इन्वेस्टमेंट है. तो अभी मैं क्या है, 5,000 रुपए की SIP करना चाहता हूँ हर महीने 5 साल के लिए. तो सर मैं जानना चाहता था 5 साल के पीरियड के लिए मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप, इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी आपके हिसाब से ठीक रहेगी SIP इन्वेस्टमेंट के लिए.
प्रशांत जी, मैं आपको 5 साल के लिए मिड कैप में निवेश करने का सलाह तो नहीं दूंगा, क्योंकि मिड कैप फंड्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली वोलेटाइल होते हैं, और इनमें जब भी निवेश करें तो कोशिश करिए कि जो आपका होराइजन है कम से कम 7 साल का रहे. उसका रीज़न ये होता है कि जो छोटा शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, इन फंड्स में गिरावट भी ज़्यादा आती है और उछाल भी ज़्यादा आता है, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं. 5 साल के हिसाब से अगर आप एकदम कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं. लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप कोई से एक अच्छा इंडेक्स फंड का चुनाव कर लीजिए, बिकॉज लार्ज कैप में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स है वो इंडेक्स को बीट करने में थोड़ा सा उनको तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा मुश्किल आ रही है. अगर आप थोड़ा सा आपका कंजर्वेटिव से आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा आपने ऑलरेडी 4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा है, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और आपको 5 साल के पीरियड में एकदम बहुत ज़्यादा एक जो गोल है आपका वो थोड़ा सा नेगोशिएबल है कि एकदम 5 साल नहीं 5-6 साल भी हो सकते हैं, तो आप थोड़ा बहुत फ्लेक्सी कैप की तरफ भी देख सकते हैं. फ्लेक्सी कैप फंड्स ज़्यादातर लार्ज कैप फोकस्ड होते हैं, उनमें तकरीबन 60-70% पैसा आपका लार्ज कैप रहता है और बाकी का मिड एंड स्मॉल कैप में हो जाता है.
एंड महेश जी जॉइन्स अस फ्रॉम दिल्ली, अपना सवाल पूछिए.
गुड इवनिंग सर.
गुड इवनिंग.
ओके, लास्ट वीक सेबी बैन द यूएस फ्रॉम जेन एक्चुअली फॉर यू नो मैनिपुलेटिंग द investment in the Indian securities actually. So what is the impact on the mutual fund industry and all? What is the caution, anything?
So I would say it is unlikely to have any impact on the investors or the mutual fund industry as per se. And the government, the regulator is very vigilant, and that was on a different thing. I mean, it was related to, you know, index futures and trading. So mutual fund industry is unlikely to have any, you know, impact as of now, I believe.
Agle caller hai Mumbai se Ratnakar, swagat hai, sawal puchhe.
Hello, good evening sir.
Good evening.
हाँ, मेरा सवाल है कि ये अभी आने वाला एक्सिस सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड जो 4 जुलाई से ओपन हो गया, तो वो कैसा है, उसमें क्या इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? और दूसरा मेरा सवाल है कि जुलाई 24 में मैंने कोटक लो ड्यूरेशन, कोटक मैन्युफैक्चर एंड कोटक अपॉर्चुनिटी, ये 3 फंड लिए थे, लेकिन उसमें जैसा चाहिए उतना ग्रोथ नहीं है, तो उसमें बने रहना चाहिए क्या? तो तीसरा सवाल.
देखिए, जो आपका पहला सवाल था एक्सेस सर्विस अपॉर्चुनिटीज फंड के लिए, मैं कहूंगा कि ये एक थीमेटिक फंड है, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप कोशिश करके ज्यादा थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में ज्यादा पैसा ना लगाए, आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए, क्योंकि इन तरीके के फंड्स में जो दिक्कत होती है कि जो फंड मैनेजर है उनका एक बहुत ही नैरो मैंडेट होता है. इस फंड के डिज़ाइन के हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शंस होती है कि जो आपका मेजर पैसा है, जो 80% पैसा है, वो एक तरीके की कंपनियों में या एक टाइप की कंपनियों में लगाना है. वहीं पे जो एक डाइवर्सिफाइड फंड होता है, वहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसका जो मैंडेट है बहुत ब्रॉड होता है, यानी कि उसको खुली छूट होती है कि वो कभी भी अपनी समझ के हिसाब से किसी भी टाइप की कंपनी में, किसी भी सेक्टर की कंपनी में लगा सकता है. तो वहाँ पे अगर वो चाहेगा तो वो एक ऐसी सर्विस सेक्टर की कंपनी में या और किसी कंपनी में भी पैसा लगा सकता है. तो अगर हम एक फंड मैनेजर को इंटरेस्ट कर रहे हैं तो मेरी समझ में ये बेहतर रहेगा कि एक ऐसे फंड का चुनाव करें जहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बकेट हो और जो फंड मैनेजर है उसके पास खुली छूट हो कि वो किसी भी तरीके की कंपनी में या स्ट्रैटेजी के थ्रू एक लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगा पाए। और जो दूसरा सवाल आपका था, आपने जो तीन फंड्स के नाम लिए उनमें से एक फंड मैं आपको बताना चाहूँगा, वो फिक्स्ड इनकम फंड है, डेट फंड है जो आपने लो ड्यूरेशन कहा, सो वो इक्विटी नहीं है। तो जो फिक्स्ड इनकम फंड्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो आपके एक पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाए। तो वहाँ पे आपका पैसा इक्विटी की तरह आप उसको मार्केट से कंपेयर नहीं कर सकते कि ज़्यादा बढ़े, वो एक स्टेबिलिटी के लिए है, एक फिक्स्ड इनकम फंड है। और बाकी दोनों फंड जो आपने बताए वो भी अगेन एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टोरल फंड था जिसके अभी हम लोग जिस टाइप के फंड की बात कर रहे थे। तो एक साल अगर आपने जुलाई 2024 में लगाया था, बहुत ही थोड़ा समय है किसी भी इक्विटी फंड को यू नो उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। आप अपने अभी उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, उसमें कुछ टाइम तक बने रहिए और देखिए वो कैसा करता है।
नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम बिहार, टिंकू जी अपना सवाल पूछिए।
हेलो टिंकू जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी?
सर जी,
जी
सर, मेरा दोस्त एक तो ये सवाल है, जो पोस्ट ऑफिस में बॉन्ड पॉलिसी बनता है ये आम आदमी के लिए है या ना? और एक सवाल ये है, मेरा 10 साल का लड़का है और 3 साल का लड़की है, उसके लिए कोई पॉलिसी अच्छा हो तो आगे के लिए उसको पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में काम आए, कोई जानकारी हमें दीजिए। तो
देखिए, जो आपका दूसरा सवाल था मैं वो पहले लेना चाहूँगा कि आपका एक 10 साल का बेटा है और एक 3 साल की बेटी है, उनकी पढ़ाई के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो पैसा है ये आपको थोड़े लंबे समय के बाद चाहिए होएगा, जैसे कि कम से कम 7-8 या 10 साल के बाद चाहिए होएगा उनकी ज़्यादा हायर स्टडीज़ के लिए। तो पॉलिसी नहीं, मैं आपको म्यूचुअल फंड का सुझाव करूँगा। आप शुरुआती तौर पे एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं और इसमें आप हर महीने जो भी आपको कन्वीनियंट हो, ₹500 महीना भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आप इसमें निवेश करिए। और जितना जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे, जितना ज़्यादा लंबा समय उस पैसे को मिलेगा इक्विटी में, उस हिसाब से आपको ज़्यादा फायदा होएगा, क्योंकि उसमें एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है जो कि टाइम के साथ हमारे को मिलता है। तो आप एक अच्छे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में उन दोनों के लिए निवेश कर सकते हैं।
जी, कोलकाता से अभिजीत हमारे साथ हैं, स्वागत है, सवाल पूछें।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
मान लीजिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो मार्केट में 8-10 साल है, 8-10 साल एक्सपीरियंस है और वो मोटा मोटे तौर पे समझदार है, तो मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर, तो उस इन्वेस्टर को मार्केट से ज्यादा रिटर्न लाने का प्रॉबिलिटी है, और कोई म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर को उम्मीद है, कौन सा कौन किसी का प्रॉबिलिटी ज्यादा है मार्केट से रिटर्न लाने का? थैंक यू।
देखिए, जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके स्किल सेट कितना है, वो मार्केट को, वो कंपनीज को कितना अच्छे से समझता है, वो ऑन अ डेली बेसिस रोज़ाना उसकी रिसर्च के लिए कितना टाइम स्पेयर कर पा रहा है, उनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स है कंपनीज की, जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती है वो कितना रीड कर पा रहा है, कितना समझ पा रहा है और उसके हिसाब से कितना एक्ट कर पा रहा है। तो जो एक एक्सपीरियंस है मार्केट का वो खाली एक फैक्टर है, उससे बस बेसिकली एक ये पता लगेगा कि अगर कोई 7-8 साल से इन्वेस्टेड है कि इक्विटी मार्केट में बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा बीच वोलेटिलिटी आती है, वो शॉर्ट टर्म में नीचे भी गिरता है फिर ऊपर भी उठता है, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग उससे कहीं ज़्यादा है। उसके लिए और काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये कम्प्लीटली उस इंडिविजुअल के स्किल्स पे डिपेंड करेगा। अगर आप उसको एक ट्राई देना चाहते हैं, इससे पहले ज़्यादा नहीं करा है, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक थोड़ा सा पोर्शन, मे बी 10-15% पैसा अलग निकाले और उससे धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करें डायरेक्ट स्टॉक्स में, बाकी का अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा दीजिए, सेफ हैंड्स में रहेगा, एक प्रोफेशनल के पास रहेगा, और जो ये 10-15% पैसा है इसे आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करिए, देखिए कि स्टॉक्स में करके उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के कि क्या आप वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्या आप रोजाना या एवरी क्वार्टर एवरी मंथ वो जो एक रिक्वायर्ड टाइम है वो अपने ऑफिस के साथ स्पेयर कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं वो सब चीज़ें करके तो आपका वो पोर्टफोलियो कैसा रिटर्न दे रहा है, अगर अच्छा रिटर्न दे रहा है तो धीरे धीरे आप अपना कुछ सालों के बाद पूरा पोर्टफोलियो उधर शिफ्ट कर सकते हैं।
आकार, इसका संबंध रिस्क से भी है, क्योंकि आप जब सीधे निवेश कर रहे हैं अगर शेयर बाजार में तो आप ज्यादा रिस्क भी उठा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, प्रीतम जी अपना सवाल पूछिए।
हेलो
हेलो प्रीतम जी, सवाल पूछिए।
जी जी जी, मतलब मैं ये पता करना चाह रहा था कि एनपीएस के लिए एक जो निश्चित जो आयु है वो क्या है, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या रेगुलर इनकम में नहीं है या असंगठित क्षेत्र से हैं वो एनपीएस में जा सकते हैं क्या? उसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि रिटायरमेंट इंश्योरेंस के लिए लास्ट एज क्या होती है?
एनपीएस के लिए एज सच एज लिमिट कोई नहीं है, जो एक नॉर्मल एनपीएस है वो आप 18 इयर्स की एज के बाद खोल सकते हैं। इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपकी रेगुलर इनकम है या नहीं है, ये एक आपके रिटायरमेंट के लिए पूंजी जोड़ने के लिए स्कीम है, एक ऑल सिटीजन मॉडल के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आप प्राइवेट एम्प्लॉय है, आप उसमें अपना पैसा निवेश करना शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जब भी आप एनपीएस में पैसा लगाए वहाँ पे पैसा आपका लगभग 60 साल की उम्र तक वर्चुअली लॉक हो जाता है, और दो मॉडल्स होते हैं एक्टिव और ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप ज़्यादा पैसा 75% तक इक्विटी में लगा सकते हैं, और मेरा मानना है कि जब भी आप रिटायरमेंट के लिए एक लंबे समय के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं तो जितना पैसा इक्विटी में रहे उतना अच्छा है, तो आप एक्टिव चॉइस का चुनाव कीजिएगा। बाकी टर्म इंश्योरेंस के लिए आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि वो ये देखना चाहेंगे कि जितने का भी आप एक टर्म प्लान ले रहे हैं उसके हिसाब से आपकी जो एक एनुअल इनकम है वो कितनी है।
जी, अगले कॉलर है प्रेम फरीदाबाद से, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
जी नमस्कार।
जी नमस्कार
सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा एक बैंक में सुकन्या योजना खोली गई है जो छोटे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए,
जी
चार पाँच साल से अकाउंट खुल जाता है तो वो योजना किस साल के बाद पेमेंट वापस मिलती है? वो योजना म्यूचुअल फंड दोनों एक समान ही माने अगर हम 500 रुपये महीना म्यूचुअल फंड में देते हैं बच्चे के नाम, और मान के चलिए 5 साल बाद हम उसमें देना बंद कर दें तो जो पेमेंट हमारी जमा होगी म्यूचुअल फंड में उसका क्या प्रावधान है, कैसे इसके तरीके है?
जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो भारत सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है, बट इसको आप म्यूचुअल फंड से एकदम एक जैसा नहीं मान सकते, यहाँ पे कुछ कुछ थोड़े से डिफरेंसेस है। सबसे पहला जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो एक फिक्स्ड इनकम स्कीम है, वो एक गारंटीड रिटर्न देती है लेकिन फिक्स्ड इनकम स्कीम है। वही म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं तो वहाँ पे आपको इक्विटीज़ का मार्केट का रिटर्न मिलेगा जो कि एक लंबे समय में, जो कि अगर आप 10-15 साल के लिए करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा।
Okay, moving on to the next big story of the day. After ending in the negative territory last week due to profit booking and amid lingering uncertainty over the India-US trade deal, the domestic markets will focus on developments about India-US trade deal and quarterly earning results next week. Last week, the Sensex and Nifty declined 0.7%. However, the mid and small cap segments registered gains.
जी आकार, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज एडिशन, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। इंडिया एंड अर्जेंटीना अग्री टू बूस्ट कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड डिफेंस। पीएम नरेंद्र मोदी रीचेस ब्राजील टू पार्टिसिपेट इन द 17th ब्रिक्स समिट बिगिनिंग टुनाइट। And domestic markets to focus on India-US trade talks and quarterly earnings results for Q's next week. That's it in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye. Market Mantra.